नमस्कार भारत, तारीख 12 अगस्त दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने दी चेतावनी।
En büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi
BJP अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में उठाया नागरिकता रजिस्टर का मुद्दा, ममता बनर्जी से किया सवाल।
शरणार्थियों को नागरिकता देने का अमेंडमेंट आएगा, आप समर्थन करोगी या नहीं करोगी।
और नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार V.S. नायपॉल का लंदन में निधन। उर्दू अखबारों की समीक्षा और खेल की खबरें भी होंगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुआ सिनी से। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका एक पादरी की वजह से तुर्की को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका एंड्रयू ब्रुसन नाम के पादरी की रिहाई की मांग कर रहा है। ब्रुसन 2 साल से तुर्की की हिरासत में हैं। तुर्की ने साल 2016 के नाकाम तख्ता पलट के साजिशकर्ताओं से संपर्क होने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया था। दूसरी तरफ अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को तुर्की से आयातित स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर लगने वाला टैक्स बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। दोनों देशों की इस कूटनीतिक लड़ाई के बीच तुर्की की मुद्रा लीरा में अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16% की गिरावट दर्ज की गई है और तुर्की गंभीर आर्थिक संकट के दौर में पहुँच गया है। वहीं एर्दोगान ने देशवासियों को दिलासा देते हुए कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉलर के बारे में चिंता मत करिए, इसका डॉलर से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके पास डॉलर है तो हमारे पास अल्लाह है, शांत रहिए। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के शब्द। साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता और भारतीय मूल के मशहूर लेखक V.S. नायपॉल का निधन हो गया है। वो 85 साल के थे। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने लंदन स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। नायपॉल ने BBC के लिए भी काम किया था। अ बेंड इन द रिवर और अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास को नायपॉल की चर्चित कृतियों में गिना जाता है। उन्हें साल 1971 में बुकर प्राइज़ और साल 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिस्र की पुलिस का कहना है कि उसने राजधानी काहिरा के पास स्थित कोप्टिक क्रिश्चियन चर्च पर होने वाले एक आत्मघाती बम धमाके को नाकाम कर दिया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक विस्फोटकों से भरी एक बेल्ट पहने शख्स ने चर्च में आए लोगों के बीच घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे चर्च की इमारत में घुसने से रोक लिया। इसके बाद उस शख्स ने खुद को पास के एक पुल के पास उड़ा दिया। बम धमाके के एक चश्मदीद ने बताया, धमाका बहुत जोर का था, बहुत ही जोर का, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कोई जख्मी नहीं हुआ, बल्कि हमलावर खुद ही मारा गया। बम धमाके के एक चश्मदीद के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। जॉर्डन में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों ने सार्ट शहर की एक इमारत में चरमपंथियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद वहां छापा डाला और गोलियां चलाईं। गोलीबारी काफ़ी देर तक चलती रही और इसके बाद एक धमाके ने इमारत को उड़ा दिया। इससे पहले चरमपंथियों ने शुक्रवार को एक म्यूज़िक फेस्टिवल वाली जगह के पास हमला किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हवाई हमले में मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। रूसी समर्थन प्राप्त सीरियाई सेना ने अब देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है, जहां विद्रोहियों का आखिरी बड़ा ठिकाना बचा हुआ है। BBC समाचार।
B बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। आज तड़के लंदन से खबर आई कि भारतीय मूल के चर्चित साहित्यकार वीएस नायपॉल का निधन हो गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नायपॉल 85 बरस के थे। नमस्कार भारत में हम नायपॉल के बारे में बात करेंगे, बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कोलकाता रैली की भी होगी, लेकिन शुरुआत एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमेरिका और तुर्की के संबंधों में तल्खी बढ़ती जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रचप तैयप अर्दवान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि उनका देश डॉलर के अलावा दूसरी मुद्रा में व्यापार करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक पादरी की वजह से अमेरिका तुर्की को घुटने पर लाना चाहता है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की और क्या वजह है, बता रही हैं सिंधु वासनी।
Ben yükseldiğinde dedim herhalde bitiyoruz gerçekten ülke ekonomisi dibe doğru gidiyor diye düşündüm çünkü
मुद्दे की बात ये है कि डॉलर की कीमत बढ़ नहीं रही है बल्कि लीरा की कीमत घट रही है। हम लोगों को ये पता होना चाहिए ईरानी मुद्रा दीनार की कीमत लीरा से ज्यादा है। मुझे लगता है कि असली समस्या यही है। ये चिंताएं भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहे तुर्की के एक आम नागरिक की हैं। तुर्की की मुद्रा लीरा में भयानक गिरावट जारी है। दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा एल्यूमिनियम और स्टील के सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाकर दोगुना किए जाने से हालात और खराब हो गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दवान ने अमेरिका पर एक पादरी की वजह से धमकी देकर इसे अपने घुटनों पर लाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
kalkıp da Türkiye'yi tehditle yola getirmeye çalışmak yanlıştır.
एक पादरी की वजह से तुर्की को धमकी देकर झुकाने की कोशिश करना गलत है। शर्म करिए, आप अपने नेटो सहयोगी को एक पादरी के लिए धमका रहे हैं। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दवान के शब्द। तुर्की ने अमेरिका के पादरी एंड्रयू ब्रूसन को अक्टूबर 2016 में गिरफ्तार किया था। ब्रूसन 2 साल तक तुर्की की जेल में रहे और तुर्की ने उन्हें अब तक नहीं छोड़ा है। ब्रूसन को तुर्की में हुए नाकाम तख्ता पलट की साजिश में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका ने उनकी रिहाई की मांग करते हुए शुक्रवार को तुर्की से आयातित स्टील और एल्यूमिनियम के उत्पादों पर लगने वाला टैक्स बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। दोनों देशों की इस कूटनीतिक लड़ाई के बीच तुर्की की मुद्रा लीरा में अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि सिर्फ ब्रूसन ही अमेरिका और तुर्की के बीच बढ़ते तनावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे तुर्की की सीरिया के लिए नीतियां और रूस से बढ़ती नजदीकियां भी शामिल हैं। इससे एक दिन पहले एर्दवान ने देशवासियों से अपने घरों में रखी विदेशी मुद्रा और सोने को लीरा से बदलने की भावुक अपील की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखकर कहा है कि अगर अमेरिका अपने रुख में तब्दीली नहीं लाता है तो तुर्की अपने लिए नए दोस्त और सहयोगी तलाशेगा। अभी ना तो अमेरिका नरमी दिखा रहा है और न तुर्की झुकने को तैयार है। फिलहाल इस कूटनीतिक लड़ाई का कोई हल नजर नहीं आ रहा है।
रिपोर्ट सुना रही थी सिंधु वासनी। दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े हुए हैं। जाहिरा तौर पर अमेरिका और तुर्की के संबंधों में खटास आने की वजह एक पादरी है, लेकिन क्या मामला यहीं तक सीमित है? हमारे साथी दिलनवाज पाशा ने यही सवाल रखा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुकद्दर खान के सामने।
पिछले 2-1 हफ्ते से जो दबाव डाला जा रहा है तुर्की के ऊपर, वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है पादरी के ताल्लुक से, ब्रंसन के ताल्लुक से, जो तकरीबन 2 साल से वहां पे बंद है। पिछले महीने अमेरिका और तुर्की के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि एक तुर्की खातून जो इसराइल में बंद थी, अमरीका मदद करेगा तुर्की को इसराइल से उस खातून को छुड़ाने की और उसके बदले ये ब्रंसन को रिहा कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने तो वो तुर्की खातून को इसराइल से छुड़वा दिया, लेकिन तुर्की ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी और उन्होंने ब्रंसन को, उसके वजह से माइकल पेंस और उनके जो इवेंजेलिकल सपोर्टर्स है वाइस प्रेसिडेंट के, वो बड़े नाराज हो गए और खुद ट्रंप पे काफी दबाव पड़ गया कि वो ब्रंसन को रिहाई के लिए कुछ ना कुछ सख्त इस्तेमाल करे। जो तुर्की की गवर्नमेंट है अभी भी वो समझती है कि अमरीका बहुत कमजोर हो गया है और तुर्की की ताकत बहुत बढ़ गई है। पिछले महीने अर्दोगान ने बयान दिया था अमेरिका को नो योर प्लेस यानी अपनी एक जगह को पहचानो।
लेकिन क्या आपको लगता है सदर अर्दोगान इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका से कह सके कि अपनी जगह देख लो?
उन्होंने कई बार कहा है ये, लेकिन तुर्की अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, वो बहुत पावरफुल, उसकी इकोनॉमी है सिर्फ 800 बिलियन डॉलर की, यानी फिलाडेल्फिया जो यहाँ पे शहर है उसकी डबल, अमेरिका के 2-3 शहरों की इकोनॉमी उतनी बड़ी है। और अर्दोगान ने अगर आप जाके पिछले 10-15 दिन से देखें अमेरिका के खिलाफ कई बयान दिए हैं, उससे अमेरिका का कुछ असर नहीं हुआ। ट्रंप ने एक ट्वीट किया और लीरा की कीमत तकरीबन 4.9 से 7 की तरफ चली गई, अब 6.4 के करीब है, यानी उस मुल्क की तकरीबन 20% दौलत खत्म हो गई एक ही झटके में, और उसके कई नुकसान हो सकते हैं। तुर्की की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉरेन लोन्स पर।
एक और सवाल ये उठता है कि क्या तुर्की आजकल रूस से ज्यादा नजदीकियां बना रहा है, और एक नेटो सदस्य देश होते हुए क्या वो ऐसा कर पाएगा, कितना करीब वो रूस के जा पाएगा?
एज ए नेटो अलाय अगर वो रशिया के साथ हथियार खरीदता है तो वो नेटो के रूल्स को तोड़ देगा। जो S-400 मिसाइल्स उसने ऑर्डर किए हैं वो अगले साल डिलीवर होने वाले हैं, अगर वो डिलीवर हो जाते हैं तो शायद तुर्की को नेटो से निकाल दिया जाएगा। ना सिर्फ वो बल्कि ट्रंप ने तो काफी सख्त सैंक्शंस की ऑर्डर दिए हैं, तो तुर्की का भी वही हाल होगा जो ईरान के साथ हो रहा है अगर वो रशिया के साथ।
जानकारी दे रहे थे प्रोफेसर मुकद्दर खान। और जैसा हमने आपको शुरुआत में जानकारी दी, नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल का निधन हो गया है। कई मशहूर उपन्यासों के लेखक नायपॉल 85 बरस के थे। उनके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं सिंधु वासनी।
साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता और मशहूर लेखक वीएस नायपॉल का निधन हो गया है। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने 85 साल की उम्र में लंदन स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। भारतीय मूल के नायपॉल का जन्म साल 1932 में त्रिनिडाड में हुआ था। त्रिनिडाड में ही पले बढ़े नायपॉल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। साल 1950 में नायपॉल ने एक सरकारी स्कॉलरशिप जीती थी जिसके जरिए उन्हें मनचाही कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता था, और उन्होंने पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुना। छात्र जीवन में वो डिप्रेशन में घिरे और यहाँ तक कि उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। लेखन की दुनिया में शोहरत हासिल करने से पहले उन्होंने बीबीसी के लिए भी काम किया था। अ बेंड इन द रिवर और अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास उनकी चर्चित कृतियों में गिनी जाती हैं। उनकी पहली किताब द माइस्टिक मैसर साल 1951 में प्रकाशित हुई थी। अपने सबसे चर्चित उपन्यास अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास को लिखने में नायपॉल को 3 से ज्यादा वक्त लगा था। उन्हें साल 1971 में बुकर प्राइज और साल 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी ने कहा कि नायपॉल ने रचनात्मकता और उद्यम से भरी जिंदगी जी है। आखिरी वक्त में वो तमाम लोग जिनसे वो प्यार करते थे उनके साथ थे।
एक ऐसी जिंदगी जिसे लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। रिपोर्ट सुना रही थी सिंधु वासनी। नायपॉल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर ज्यादा जानकारी के लिए आप रुख कर सकते हैं bbchindi.com का। और अगली खबर भारत के पश्चिम बंगाल से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह कल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में थे। उन्होंने पार्टी की रैली में असम के नागरिकता रजिस्टर का मुद्दा उठाया और राज्य की मुख्यमंत्री यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने कई सवाल रखे। अमित शाह ने क्या कहा वो सुनिए।
बांग्लादेशी घुसपैठिए तृणमूल कांग्रेस की वोट बैंक बने हुए है, वोट बैंक बने हुए। ममता जी ये स्पष्ट करिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष स्पष्ट करे कि आप देश की सुरक्षा को आगे रखते हो या अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को आगे रखते हो। मित्रों, और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताइए, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 लोकसभा और राज्यसभा में आएगा, शरणार्थियों को नागरिकता देने का अमेंडमेंट आएगा, आप समर्थन करोगी या नहीं करोगी?
ये थे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। तृणमूल कांग्रेस ने अमित शाह की रैली को फ्लॉप शो करार दिया है। बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टाशाली भी इस रैली पर नजर बनाए हुए थे। रैली के बाद हमारे साथ ही दिलनवाज पाशा ने अमिताभ भट्टाशाली से संपर्क किया और पूछा कि अमित शाह ने बांग्लादेश से आए लोगों में से कुछ के लिए घुसपैठी और कुछ के लिए शरणार्थी शब्द इस्तेमाल किया, इसके राजनीतिक मायने क्या है।
उन्होंने आरे हाथ लिए ममता बनर्जी को और जनता को बार बार पूछते रहे कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि अमित शाह की भाषण सुनते सुनते ये पता चल ही रहा था कि जिस तरह से एनआरसी की इशू को लेकर के बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स की चर्चा हो रहा है पिछले कई हफ्तों से, ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर। उसी प्लैंक से ही अमित शाह ने ममता बनर्जी के खिलाफ आज चर्चा करती रही और ममता बनर्जी इस तरह से 2005 में पार्लियामेंट में हंगामा मचाई थी। अमित शाह का ये भी कहना था कि ममता बनर्जी 180 डिग्री घूम करके वही बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन करने लगी, चूंकि वो अब तृणमूल की वोट बैंक बन चुका है, यही अमित शाह का कहना है। पर साथ में राजनीतिक तौर पे ये भी महत्वपूर्ण है कि भले ही वो पूरी ज्यादातर भाषण बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बोलते रहे, पर आखिर वो कहा कि जो शरणार्थी है, क्योंकि पहले वो घुसपैठी बोल रहे थे और आखिर में वो शब्द का चयन किया शरणार्थी, जहां वो बांग्लादेश या अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, पड़ोसी देशों से जो उन सब देशों के धार्मिक संख्यालघु है, धार्मिक रिलीजियस माइनॉरिटी है हिंदू, तो उनको जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारतीय नागरिकता दिए जाने का जो बीजेपी का नीति है उसके बारे में चर्चा की है वो काफी, और बोलते रहे कि शरणार्थियों को कतई बंगाल से हो या आसाम से हो या भारत से नहीं निकाला जाएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी। तो जो घुसपैठी और शरणार्थी दोनों का वो फर्क आज साफ तौर पर वो कह दिया।
ये थे अमिताभ भट्टाशाली। उधर सीबीआई की एक टीम कल बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह पहुंची और वहां तलाशी ली। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार मामले की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम ने कल पहली बार दिन भर का समय बालिका गृह में बिताया। इस दौरान उसने सील बंद कमरों को खोला, उसकी तलाशी ली और कागजातों की जांच पड़ताल की। सीबीआई की मदद दिल्ली से आई सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों ने भी की। दूसरी ओर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से निशाना साधा। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से 20 सवाल पूछे और नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगा।
एक टिप्पणी आई है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर। मैं नीतीश कुमार जी से जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इतने तल्ख टिप्पणी के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक चुप क्यों हैं? मैं 20 सवाल नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं और अगर ये 20 सवाल का जवाब नीतीश कुमार जी देते हैं इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं।
तेजस्वी ने मुख्य रूप से इस मामले में बिहार सरकार से कार्रवाई करने में हुई देरी, बिहार पुलिस के जाँच के तरीकों और मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर को विज्ञापन दिए जाने के संबंध में सवाल पूछे। गौरतलब है कि अखबारों को विज्ञापन देने वाला सूचना और जनसंपर्क विभाग बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही है। इससे पहले तेजस्वी 4 अगस्त को इस मामले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के साथ साथ एक खुला पत्र भी लिख चुके हैं। यह मामला बीते महीने राष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा में आया था जब बिहार पुलिस ने इस बालिका गृह के एक हिस्से की खुदाई की थी। यहाँ रहने वाली लड़कियों ने आरोप लगाए थे कि गृह की एक लड़की की हत्या के बाद उसके शव को घर के पिछले हिस्से में दफना दिया गया था। इसी आरोप के आधार पर तब वहाँ खुदाई हुई थी। कल सीबीआई ने फिर से खुदाई के लिए मशीन मंगाई लेकिन उसने नए सिरे से खुदाई नहीं की। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीबीआई अपनी निगरानी में यहाँ फिर से खुदाई करा सकती है। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
और स्टूडियो में मौजूद हैं सिंधु वासनी अखबारों के साथ आपको बताने के लिए आज की सुर्खियां।
जी वात्सल्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया है और ये खबर तकरीबन सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है।
जी ट्विटर पर भी रात में ये इंटरव्यू ट्रेंड कर रहा था।
जी जी इंटरव्यू में उन्होंने एनआरसी, राहुल गांधी के गले लगाने और जैसे तमाम विषयों पे बात की है। एनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारत के किसी भी नागरिक को देश नहीं छोड़ना होगा।
ये शायद एनआरसी पर उनका पहला बयान है।
जी मॉब लिंचिंग और महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर चुप्पी के आरोपों के जवाब में उन्होंने कहा कि हम ऐसी मानसिकता और कार्यों के खिलाफ हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम चुप नहीं रहते, हम समय समय पर इनके खिलाफ बोलते रहते हैं।
लेकिन लोगों को शायद एक्शन का ज्यादा इंतजार रहता है।
जी इसके अलावा केरल में बाढ़ की खबर भी सभी अखबारों में दिख रही है। राज्य में बाढ़ से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और तकरीबन 40 लोगों की मौतें हो चुकी हैं अब तक, और 36,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, ऐसा अनुमान है।
जी
हिंदुस्तान टाइम्स में कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली की खबर है, और उन्होंने भाषण में, जैसा कि हम रिपोर्ट में सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अवैध प्रवासी जो हैं वो ममता बनर्जी का वोट बैंक है, इसलिए वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है कि यूपी के हापुड़ में वकीलों ने पुलिस की मौजूदगी में एक बलात्कार पीड़िता पर हमला कर दिया।
जी ये भीड़ के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिंधु वासनी अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब जान लेते हैं इस हफ्ते पाकिस्तान के उर्दू अखबारों में किन खबरों को जगह मिली। उर्दू अखबारों की समीक्षा तैयार की है बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने, और इसे सुना रहे हैं मोहम्मद शहीद।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते भी चुनावी नतीजों के बाद पैदा हुए हालात से जुड़ी खबरें ही सुर्खियों में रहीं। 25 जुलाई को पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और इमरान खान पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। इमरान खान 18 अगस्त को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि पहले खबर आई थी कि वो 11 अगस्त को शपथ लेंगे, फिर खबर आई कि 14 अगस्त को वो कुर्सी संभालेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि 18 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह होगा। अखबार नवाए वक्त ने पीटीआई के प्रवक्ता फवाद चौधरी के हवाले से लिखा है कि 13 अगस्त को नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे और 18 अगस्त को इमरान खान प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि 1992 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के सभी खिलाड़ियों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की दावत दी गई है। अखबार दुनिया का दावा है कि भारत के 3 पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर, कपिल देव और नवजोत सिंह सिद्धू को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की दावत दी गई है। पाकिस्तान की एक राजनीतिक पार्टी मुत्तहिदा मजलिसे अमल और जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा है। अखबार नवाए वक्त के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने अपने निवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जुलाई को हुए चुनाव में बदतरीन धांधली हुई और एक पार्टी को जाली बहुमत दी गई। उनके अनुसार अब उसी जाली बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अखबार दुनिया के अनुसार इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने इमरान खान से मुलाकात की और भारतीय नेतृत्व की तरफ से उन्हें चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मुबारकबाद दी। अखबार के मुताबिक भारतीय उच्चायुक्त ने उन्हें भारतीय क्रिकेटरों के हस्ताक्षरों वाला एक बैट तोहफे में दिया। इमरान खान ने इस मौके पर कश्मीर समस्या को बातचीत के सहारे हल करने पर जोर दिया। इसके अलावा इमरान खान ने इसी साल के अंत में सार्क देशों के सम्मेलन को पाकिस्तान में आयोजित करने की बात की और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होने की अपील की। दुनिया अखबार की खबर के अनुसार राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद कोठियों पर पूर्व सांसद कब्जा जमाए बैठे हैं और सरकार उनसे कोठी खाली कराने की अपील कर रही है। एक अन्य खबर में अमरीका ने पाकिस्तान के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभियान को स्थगित कर दिया है। एक्सप्रेस न्यूज के अनुसार अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामोशी के साथ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। अखबार जंग ने कहा है कि पाकिस्तान पर एक और दबाव डालने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह का फैसला लिया है।
उर्दू अखबारों की समीक्षा सुना रहे थे मोहम्मद शाहिद, और अब मुलाकात इस हफ्ते की न्यूज मेकर से, जो है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु।
आप सुन रहे हैं शो बीबीसी न्यूज मेकर्स, मैं आपके साथ हूं सुमिरन, और इस बार हमारी खास मेहमान है पीवी सिंधु। हाल ही में सुर्खियों में रही पीवी सिंधु क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। जब लोगों ने कहा गोल्ड क्यों नहीं सिल्वर ही क्यों, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया सोशल मीडिया के जरिए ये कहकर कि भाई मेडल मेडल होता है और सिल्वर मेडल लाना कोई आसान बात नहीं है।
I always believed in myself ki, you know, main acha khel sakti hu. Many people supported me and you know, some of the people also criticized me. Doesn't mean I need to take to my heart. You know, I believe in myself and definitely I will get gold some or the other day. You know, silver is not a small thing where, you know, I actually came to the finals and just lost, you know.
चार भारतीय खिलाड़ी जो है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे हैं और भारत की पीवी सिंधु तो ले आई भारत के लिए सिल्वर मेडल। 23 वर्षीय हैदराबाद की पीवी सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंदन से बड़े खुश हैं।
गोपी सर हैप्पी था एंड ही वाज हैप्पी दैट आई प्लेड वेल। मतलब वो रहता है मैच होने के बाद, उन्होंने बोला कि इधर तक आया था एंड आई प्लेड फाइनल, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई नो यू नो एनीबॉडी वुड वांट टू विन बट यू नो यू विन सम यू लूज सम।
अठारह अगस्त से इंडोनेशिया में शुरू हो जाएंगे एशियन गेम्स। पीवी सिंधु जो जा रही हैं एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने, तैयारी कर रही हैं और हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्होंने जीता सिल्वर मेडल। आइए जानते हैं उनकी तैयारी के बारे में।
एशियन गेम्स बहुत बड़ा टूर्नामेंट है एंड बस एक ही वीक है जाने के लिए, तो प्रैक्टिस वाइज इज गोइंग ऑन वेल। Not much of time, but I think we'll have to do how much ever it is. Last time हमने bronze लेके आया था, तो इस बार definitely I hope that we do well in the teams and as well as the individuals.
तो ये थी हमारी खास बातचीत पीवी सिंधु से। पीवी सिंधु जो अब तैयारी कर रही हैं एशियन गेम्स की।
और अब सुनाते हैं खेल की बाकी खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
If weather permits, I'm sure our bowlers will bowl well in right areas and as I said, cricket's a funny game, so we still have to back ourselves and get that positive mindset again back.
ये शब्द हैं भारत के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के, जिन्हें उम्मीद थी कि पहली पारी में महज 107 रन पर सिमटने के बाद शायद भारत के गेंदबाज कोई चमत्कार कर सके और इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर अपना असर डाल पाए। लेकिन कल लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंग्लैंड ने विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के 93 और क्रिस वोक्स की शतकीय पारी की मदद से अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। जॉनी बेयरस्टो और क्रिस वोक्स के बीच छठे विकेट के लिए 189 रनों की साझेदारी ने भारत को करारा झटका दिया। कल स्टंप के समय इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट खोकर 357 रन था। क्रिस वोक्स 120 और सैम कुरैन 22 रन बनाकर क्रीज पर थे। बेयरस्टो ने अपनी 93 रनों की पारी के दौरान 12 चौके जमाए। वो हार्दिक पांड्या की गेंद पर विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के हाथों लपके गए। वैसे एक समय इंग्लैंड ने अपने 4 विकेट केवल 89 रन पर खो दिए थे। एलिस्टेयर कुक 21, कीटन जेनिक्स 11, कप्तान जो रूट 19 और ओलीपॉप 28 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। जॉस बटलर ने भले ही 24 रनों की संक्षिप्त पारी खेली, लेकिन उन्होंने केवल 22 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से ये उपयोगी रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों का दबाव समाप्त कर दिया। जब इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट खोकर 357 रन था, तब खराब रोशनी के कारण खेल रोक दिया गया। तब तक इंग्लैंड की बढ़त पूरे 250 रन की हो चुकी थी। भारत के मोहम्मद शमी ने 74 रन देकर 3 और ईशांत शर्मा ने 58 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी 66 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, लेकिन अनुभवी स्पिनर आर अश्विन को 68 और अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे कुलदीप यादव को 44 रन खर्च करने के बाद भी कोई विकेट नहीं मिला। उधर वियतनाम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के अजय जयराम ने कल फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। कल सेमीफाइनल में उन्होंने 7वीं वरीयता हासिल जापान के यू इगाराशी को 21-14, 21-19 से हराया।
और चलते चलते मुख्य समाचार सिंधु वासनी से।
बीबीसी समाचार। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान का कहना है कि अमेरिका एक पादरी की वजह से तुर्की को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता और भारतीय मूल के मशहूर लेखक वीएस नायपॉल का निधन हो गया है। वो 85 साल के थे। मिस्र की पुलिस का कहना है कि उसने राजधानी काहिरा के पास स्थित कोप्टिक क्रिश्चियन चर्च पर होने वाले एक आत्मघाती बम धमाके को नाकाम कर दिया है। जॉर्डन में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हवाई हमले में मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।